जो आजकल का लाइफस्टाइल है, जहाँ पे सोशल मीडिया हैज़ अ लॉट टू डू एंड देखना दिखाना कि तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास क्या, एंड उसके चक्कर में पीयर सोशल प्रेशर आ जाता है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है जेब में, लेकिन चाहे लोन लो, ऐप्स आ जाती हैं आजकल लोन देने की एंड ऑल दैट, घर वालों से लो, खुद कमाओ ना कमाओ, जेब खर्चा, फिर भी लोग इस तरह के लाइफस्टाइल में बाय प्रेशर आ जाते हैं। वट इज़ वन एडवाइस फॉर दोज पीपल इफ दे आर योर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि उनको एग्जैक्टली किस तरह से देखना चाहिए? स्टॉक मार्केट में भी लोग इसी तरीके से ही आते हैं काफ़ी बार।
हाँ, जैसे स्टॉक मार्केट तो आज भी हमारे यहाँ जो आई है तो उसमें भी अभी भी मतलब मुझसे छोटे भाई बहन एडवाइस मांगते हैं, मैं उनसे एडवाइस देता हूँ, लेकिन वो तो घर की मुर्गी दाल बराबर वाले हिसाब है। तो मतलब वो लोग बोलते हैं कि ठीक है भैया ने जो बोला बोला वो तो चलता है, लेकिन जो लोग डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं भैया, वो बहुत ही मतलब यूथ जो है वो पता नहीं किस तरफ जा रहा है। और आजकल आप देखोगे तो जो नौकरियाँ जो मिल रही है लोगों को 25,000 30,000 इज़ अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन उसके बाद वो जाल में फंस जाते हैं। मेरे ऑफिस का जो ड्राइवर है उसको 25,000 रुपये मिलते हैं और वो मुझे बता रहा है कि भैया मैंने ना अमेज़ॉन से कुछ बाई किया था तो अमेज़ॉन पे बाई नाउ पे लेटर वाले में फंसा हुआ है वो। तो ये जो लोग कुछ भी खरीदने की जो टेम्पटेशन है ना यार, अब छोटे छोटे ड्राइवर्स की सैलरी 20,000 25,000 है, वो बंदा भी जब डेट ट्रैप में फंस रहा है, आईफोन ले रहे हैं लोग, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये दिखावे से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और इसके लिए मैं कैसे बाहर निकला, मैं भी दिल्ली में रहा हूँ, दिल्ली में 8-10 साल रहा, चंडीगढ़ में रहा, पटियाला में रहा, अम्बाला में रहा, इंडिया के पापा के साथ हर जगह घूम घूम के रहा हूँ। तो दिखावे का प्रेशर हर आदमी के अंदर होता है, लेकिन एक जो जिस चीज़ ने मेरी बहुत हेल्प की जब मैं डिप्रेशन के फेस में भी था, मेडिटेशन करना, पूजा करना और स्पिरिचुअल। मैं पहले नॉनवेज खाता था, नॉनवेज छोड़ दिया, 2 साल हो गए नॉनवेज खाए हुए, फिर थोड़ा भक्ति की, ध्यान किया, माइंड को शांत किया, ये सारा खेल इसका है। ये आपका ठीक है तो आप सही रास्ते पे, और इसको दुनिया जो है वो माया जाल में फंसा के रखा हुआ है। तो ये ठीक करिए, बॉडी पे ध्यान दीजिए, ट्रेडिंग पूरा का पूरा दिमाग चुस्ती है भैया, आप तो जानते ही हो। तो दिमाग आपका स्वस्थ रहेगा तो ट्रेडिंग में आप पैसा बनाओगे। दिमाग को स्वस्थ रखना है, पूजा करो, डिवोशन रखो, मेडिटेशन करो, सब बढ़िया रहेगा, लाइफ स्टाइल ठीक करिए।
सी, इसका एक द डायरेक्ट कनेक्ट टू दिस इज़ कि बहुत सारे लोग इसी शो ऑफ के कारण या पीयर प्रेशर के कारण या जल्दी पैसा कमाने के कारण ड्रीम इलेवन और स्टॉक मार्केट को एक जैसा सोचते हुए एंटर करते हैं, एंड दे थिंक दैट दे कैन मेक क्विक मनी। आजकल क्विक मनी, जैसे क्विक रील्स या क्विक शॉर्ट्स देखने हैं, बहुत ही सी वी हैव डन अ वीडियो ऑन दिस कि सुसाइड्स बढ़ रहे हैं इंडिया में, एंड मैं थोड़ा अलग ऑफ ट्रैक पे जा रहा हूँ, बट हम इस पॉइंट पे हैं तो आई लाइक टू स्पेंड 2 मिनट्स ऑन दिस के एंड मेजरली सुसाइड इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा कहीं से उठा के स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं, ज़्यादातर ऑप्शंस में, एंड देन दे लूज़ पैसा, नुकसान कर लेते हैं। एंड वो पैसा शायद घर वालों का होता है, दुकान गिरवी, ऐसे केस भी आए हैं जहाँ पे दुकान पापा की गिरवी रख दी है, पापा को भी पता नहीं है, पापा बेड पे हैं, अब वो पैसा भी चला गया है, एंड देन दे से सुसाइड कर लेंगे, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। बट ये रूट कॉज, यही जो आप पॉइंट बोल रहे हो, वहीं से ओरिजिनेट होता है। एनीवे, थोड़ा डिप्रेसिंग पॉइंट हो गया, बट लेट्स कम बैक।
नहीं, सुसाइड का टेम्पटेशन मेरे अंदर आया था जब मेरी कोचिंग बंद हो गई, कोरोना लग गया, तो जब सुसाइड की टेंडेंसी अंदर आ गई क्योंकि पैसे डूब चुके हैं, कोचिंग बंद हो रखी है, घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैंने एक टर्म इंश्योरेंस ले ली कि अब मैं सुसाइड अगर करूँगा तो घर वालों को पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जब पॉलिसी ली तो पता लगा कि यार सुसाइड 1 साल तक कवर नहीं होता है, 1 साल के बाद सुसाइड कवर होता है। तो फिर वो टेम्पटेशन धीरे धीरे चली गई और डिवोशन पकड़ लिया, तो भक्ति डिवोशन उधर बढ़ते बढ़ते फिर चीज़ सही हो गई, मतलब अच्छा हो गया, भगवान जी राम जी की कृपा से सब बहुत बढ़िया हो।
नहीं, बट थैंक गॉड दैट टर्म इंश्योरेंस के पास वो टर्म एंड कंडीशन थी। थैंक गॉड टू दैट पॉलिसी राइटर जिसने वो पॉलिसी बनाई होगी कभी कि यार ये डाल दो 1 साल के अंदर, ही तो लोग यही करने लग जाएंगे। ओके ओके विवेक, ऑप्शन सेलिंग में सबसे मुश्किल क्या लगता है आपको?
ऑप्शन सेलिंग में, इनफैक्ट हर ट्रेडिंग में ही मुश्किल चीज़ जो है वो साइकोलॉजी है। ऑप्शन सेलिंग में आपका पैसा बड़ा घुसता है तो उसमें जब लॉस वाला MTM दिखना चालू होता है, वो भी काफ़ी बड़ा दिखना चालू होता है। तो मेरे को तो सबसे मुश्किल लगता था पहले स्टार्टिंग में कि जो MTM फ्लक्चुएट कर रहा है वो दिल को धक धक करता था, लेकिन धीरे धीरे माइंड को ट्रेन किया कि दीज आर जस्ट दी नंबर्स, इनको देख के SL टाइम पे काटना, SL को ले लेना और ज़्यादा उसके प्रति लगाव नहीं रखना, वो चीज़ धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आती है। मतलब थ्योरी आपको हर कोई पढ़ा देगा, जो मैं स्ट्रेटेजी करता हूँ वो एकदम खुलेआम हर जगह अवेलेबल है, कुछ सीक्रेट उसमें है नहीं, लेकिन हर बैट्समैन अलग क्यों होता है भैया? बैट को बॉल को तो मारना है बैट से, लेकिन सबकी टेक्निक, सबका माइंडसेट, वो उनको डिफरेंट करता है। और वही सेम चीज़ हम बच्चों को IIT के प्रिपरेशन में भी सिखाते हैं, और वही सेम चीज़ मैंने अपने ऊपर लगाई भी कि नहीं भैया, माइंड को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है कि भैया ऑप्शन सेलिंग में बड़ा पैसा है, और बड़े पैसे में जब MTM फ्लक्चुएशंस आएंगे तो बड़ी फ्लक्चुएशंस भी आएंगी, आपको सब्र रखना है, पेशेंस रखना है। और ऑप्शन सेलिंग की सबसे अच्छी बात ये है ना, मतलब जो हमारी स्ट्रेटेजी है ऑप्शन वाली स्ट्रेटेजी, कि हमको पहले से ही ट्रेड का आउटकम पता होता है। तो अगर सोचो भैया आपको पहले से ही आउटकम पता है, आपको पहले से भविष्य दिख रहा है, तो जब वो भविष्य आपके सामने आएगा तो आप इतना ज़्यादा हलचल महसूस नहीं करोगे। तो मैं इसी कारण से इस स्ट्रेटेजी में शिफ्ट हुआ, क्योंकि इसमें स्क्रीन टाइम नहीं लगता, आप दिन में 5 मिनट दे रहे हो, 10 मिनट दे रहे हो, दैट इज़ सफिशियंट, इतना काफ़ी हो जाता है, और आपको पहले से ही ट्रेड का आउटकम पता होता है। तो जितने भी लोग मतलब ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, उनको समझना पड़ेगा कि पहले मैं इक्विटी में था, फिर फ्यूचर में आया, ऑप्शंस में आया, मैंने हर चीज़ ट्राई की। जो चीज़ आपके माइंडसेट को सूट करती है आप उस पर करिए काम। तो मेरे माइंडसेट को ऑप्शन सेलिंग सूट किया, एंड आई एम वेरी गुड डूइंग विद इट, तो कोई दिक्कत महसूस कभी नहीं हुई मुझे।
आपके पास ये एडवांटेज था कि आपके पास कैपिटल था। जब पहली बार मार्केट में आए थे तब कितने कैपिटल से आए थे?
वही बोल रहा हूँ, पापा का पैसा लेकर आया था, जो भी उन्होंने दिए थे पैसे, जो भी खरीदा था मैंने, स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट वही था। उसके बाद जो मेन पैसा आया ना, मतलब जो मैंने 35 लाख, अगर आप पूछो कहाँ से डाले मैंने, क्योंकि मेरे को जॉब करते हुए ऑनलाइन अनअकैडमी भी कर रहा था, 30,000 की सैलरी थी, तो कहाँ से पैसा आया? तो वो पैसा आया क्रिप्टो करेंसी से। मतलब क्रिप्टो करेंसी का मैं शुक्र करता हूँ, उसने मुझे बहुत पैसा दिया है। मतलब जब मैं लॉस हुआ था तो मैंने क्रिप्टो करेंसी में, जब आपको याद होगा 2017-18 के टाइम मार्केट क्रैश हुआ था, मैंने अपनी लगभग फिर से 3-3.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, एंड दैट वाज एट द बॉटम, एंड मैंने उससे लगभग 3 लाख से 2021 में 74 लाख रुपए के आसपास पैसे निकाले। उसमें से मैंने आधे की जमीन खरीदी, आधा पैसा अपना ट्रेडिंग कैपिटल में इन्फ्यूज किया।
What?
तो हाँ, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी दूंगा कि मेरा अकाउंट जो उसका जो मेरा एक्सोडस का वॉलेट था, एक्सोडस वॉलेट का मेरा जो मैक्सिमम कैपिटल गया था उससे मैंने पैसे निकाले, वो पूरा पैसा आया, फिर उससे मैंने जमीन खरीदी। पापा के छाती चौड़ी हो गई कि हमारा बेटा कुछ कर रहा है, और उसी जो आधा पैसा था वो मैंने ट्रेडिंग कैपिटल में इन्फ्यूज किया।
ये तो आपने सारे, वो क्या कहते हैं, सारे इमोशन ही बदल दिए आपने, हालात ही बदल दिए, वक्त बदल दिया आपने। ये 3 लाख से जो 74 लाख की बात की आपने,
मतलब हाँ, एक जैकपॉट, एक जैकपॉट लग गया, और उसने मुझे आज तक संभाल के रखा हुआ है।
ओके,
मैं मानता हूँ इस
चीज़। ये एक तुक्का ही था, आई एम अज्यूमिंग, कि आपको, आपने इसके लिए भी पढ़ाई की थी?
ये तुक्का था ना, ना भाई, इसके लिए झूठ की बोलूँ मैं, कोई पढ़ाई नहीं की थी इसके लिए। ऐसे था कि 2.5 लाख रुपये डूब गए हैं, काफ़ी नीचे गिर गया है, नया टेक है तो पैसा लगा देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने इसमें जो पैसे डाले थे वो ये सोच डाले थे कि अब मैं 3 लाख का लॉस और सह सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2018 में इंक्रीमेंट भी हुआ था ऑफिस में, पैसे भी लगा के छोड़ दिए, तो कोई दुख नहीं था उसका कि लगा के। और उसमें क्या हुआ ना, हम 4 दोस्तों ने पैसे डाले थे, वो जो बंगला साहब गया था मेरे साथ उसने भी डाले थे, ठीक है। और उसके बाद जब डिप आना चालू हुआ तो वो 3 लाख घटते घटते 1.25 लाख तक भी आ गया था। मेरे बाकी दोस्तों ने पैसे निकालने चालू कर दिए, 2 लाख आया पैसे निकाल दिए, 1.5 लाख हुआ पैसे निकाल दिए, लगभग वो 70-80 हज़ार के पास आया था। मैंने बोला अब निकाल के क्या करूँगा, कैजुअल मोड निकाल के छोड़ दिए, और वो चीज़ 2021 में।
यार ये तो, इस पे तो मूवी बन सकती है यार, इतनी सी बात पे मूवी बन सकती है कि अगर उस टाइम पे यू डिड नॉट लूज आउट ऑन द पेशेंस पार्ट, इफ़ यू हैड लॉस्ट आउट, तो चीज़ें बहुत अलग होती शायद, कहानी, जिंदगी कहानी अलग हो जाती है आपकी। ये बंगला साहिब की कहानी क्या है?
मूर्ख बनना अच्छा होता है, बुद्धिमान रहोगे पैसा निकाल लोगे, मूर्ख बने साला आप तो जो होगा देखा जाएगा, राम जी के भरोसे पैसा डूबा तो डूबा, वो पड़ा रहा। बंगला साहिब गुरुद्वारा है गोल मार्केट में, दिल्ली में एक जगह है जहाँ राजीव चौक के पास बंगला साहिब गुरुद्वारा है, दिल्ली का बहुत ही वो बड़ा गुरुद्वारा है दिल्ली का, बंगला साहिब गुरुद्वारा। तो मतलब वो मेरे घर के पास था, वहाँ हम लोग लंगर खाने बहुत बढ़ जाते थे, प्रसाद खाने बहुत बढ़ जाया करते थे। तो उसके प्रति मन में थोड़ा सा था कि मतलब यहाँ जो मांगेंगे वो अच्छा हो जाएगा। तो जब भी मतलब जब क्रिप्टो करेंसी के पैसे डूब रहे थे तब भी वहाँ गए थे कि भगवान जी बचा लो, सेवा करेंगे, लेकिन पैसे डूब गए। लेकिन जब वहाँ से रन निकला तो आई एम वेरी मच थैंकफुल कि नई चीज़ें बहुत पॉजिटिव हुई उसके बाद। और पॉजिटिव अगर आपका माइंडसेट रहेगा ना तो आपको हर जगह पॉजिटिव चीज़ें ही अप्रोच करेंगी, जैसे आज आपसे मुलाकात हो गई तो वही हुआ, लक अभी साथ देगा जब आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने जीवन में आगे बढ़े।
लाइफ हैज सो मेनी थ्रेड्स कनेक्टेड, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कनेक्टेड है ही, चाहे वो 5 साल पहले की बात हो, 2017 की बात हो, या 2021 की बात हो। वॉट इज योर प्लान अहेड? मतलब आप ऑप्शन सेलिंग में एक पार्ट टाइम या साइड, अभी ये साइड इनकम बहुत वैल्यू अच्छी खासी है, बट एक साइड लेवल पे चल रहा है आपका, बिकॉज योर मेन जो आपका है वो सैलरी है आपका. इज इट समथिंग ऐसे ही चलने रहना है, या यू हैव सम प्लान्स के कुछ सोचा है कि कुछ करना है, या वो वापस एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा वापस आएगा?
नहीं, आप समझिए इस चीज़ को कि रिस्क लेने का कीड़ा आदमी के अंदर दो ही स्टेज पे आता है भैया, एक शादी से पहले और दूसरा 60 साल की उम्र पे. शादी से पहले कोई लाइबिलिटी नहीं भैया, बंदा आराम से रिस्क लेगा, मेरा पैसा मैं दिखूंगा. 60 साल के बाद बच्चे हो गए, बच्चे सेट हो गए, बीवी बूढ़ी हो गई, कोई काम नहीं है तो रिस्क ले सकता है आदमी. तो आदमी जीवन में रिस्क, मेरे हिसाब से मेरी फिलोसफी मतलब ये, बाकी आपकी जो व्यूअर्स हैं उनकी अपनी फिलोसफी, तो अपना दो फंडा है. तो अभी मैं कोई रिस्क नहीं लेने वाला हूँ जीवन में अपने, जॉब इज डूइंग गुड. लेकिन मेरा अभी टारगेट है कि जैसे मुझे इंडिपेंडेंट होना है फाइनेंशियली, तो मुझे एक इमरजेंसी कॉर्पस चाहिए, मुझे अपना लिक्विड फंड चाहिए. तो मेरा वो टारगेट्स मैंने गोल सेट कर रखे हैं कि मुझे मतलब अगले 10 साल में अपना गोल कहाँ कहाँ करके टारगेट्स अचीव करने हैं, ताकि मैं अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बोल पाऊँ. एंड टीचिंग मुझे पसंद है. देखिए बहुत सारे लोगों का भैया ये मतलब होता है ना कि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आप रिटायर अर्ली हो, तो आप जॉब छोड़ दोगे. मेरे जो अभी सेंटर हेड मेरे बॉस हैं, उन्होंने मुझे बताया कि विवेक जॉब छोड़ना इज़ नॉट रिटायरमेंट. आप अगर उस जॉब में काम कर रहे हो, आपको पढ़ाने में मज़ा आता है तो आप पढ़ाओ, लेकिन मैं पढ़ा के अपना घर चलाऊं वो आपके अंदर नहीं होना चाहिए. आपका पैसा कहीं और से आ रहा, आपको पढ़ाना पसंद है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ मुझे पसंद है, तो ये चीज़ मेरे फाइनेंशियल्स को मतलब इफेक्ट नहीं करनी चाहिए. मैं पढ़ाते रहूँगा, बाद में भी पढ़ाऊंगा, मज़ा आता है. हर साल नए नए बच्चे मिलते हैं, उनका चेहरा देखने को मज़ा आता है, यंग एनर्जी आती है, और उसी कारण से मुझे अंदर एनर्जी है, तो पढ़ाने में मजा आता है. मैं 32 का होने वाला हूँ सितंबर में, 32 का हो जाऊंगा. ये सब 32 ईयर्स ओल्ड, 31 रनिंग. आजकल लड़कियों से सीख रहा हूँ कि रनिंग बोलने में थोड़ा यंगस्टर वाली फील आती है. तो 31 रनिंग है, 32 ईयर ओल्ड हो जाऊंगा सितंबर में.